लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित सेंट पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 3 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेली ए सोरेले, बोनजोर्नो। नेल वांजेलो देला लिटुर्जिया दी ओजी वेडियामो उना रिएक्शने दी येसू प्यूटोस्टो इनसोलिटा।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज के धम्म विधि के सुसमाचार पाठ में हम यीशु की एक असामान्य प्रतिक्रिया को देखते हैं। वे गुस्से में हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि उनका गुस्सा फरीसियों के कारण नहीं है, जो उनकी परीक्षा लेने के लिए तलाक की वैधता के बारे में सवाल करते हैं, बल्कि शिष्यों के कारण है, जो उन्हें भीड़ से बचाते और कुछ बच्चों को फटकारते हैं जिन्हें उनके पास लाया गया था। दूसरे शब्दों में, प्रभु उनसे गुस्सा नहीं होते जो उनसे विवाद करते हैं, बल्कि उनसे होते हैं जो उनके भार को कम करने की कोशिश करते हुए उन्हें बच्चों से दूर कर देते हैं। क्यों? यह एक अच्छा सवाल है। यीशु क्यों ऐसा करते हैं? संत पापा ने कहा, आइए हम याद करें, यह दो रविवारों के पहले के सुसमाचार पाठ में था कि यीशु ने एक बालक का आलिंगन किया था, छोटे बच्चों के सामने अपने को प्रस्तुत किया था। उन्होंने बतलाया था कि यकीनन छोटे लोग हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें आवश्यकता है और जो वापस नहीं कर सकते उन्हें की मदद पहले की जानी चाहिए। जो ईश्वर की खोज करते हैं वे छोटों और जरूरतमंदों में ही उन्हें पा सकते हैं, ना केवल चीज वस्तुओं से अभावग्रस्त लोगों में, बल्कि देखभाल और सांत्वना की कमी, बीमार, अपमानित, कैदी, अप्रवासी और बंदी लोगों में भी। वे उन्हें छोटे लोगों में उपस्थित हैं। यही कारण है कि यीशु गुस्से में है। जो कुछ एक निम्न, गरीब, बच्चा, असहाय व्यक्ति के लिए किया जाता है, वह उन्हीं के लिए किया जाता है। यीशु आज इस शिक्षा को देते और पूरा भी करते हैं। वास्तव में वे कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर के राज्य का स्वागत एक बच्चे की तरह नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। संत पापा ने कहा कि यही नई बात है कि शिष्यों को केवल छोटों की सेवा नहीं करनी है, बल्कि अपने आप को छोटा मानना है। क्या हम प्रत्येक जन ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा मानते हैं? हम इस पर चिंतन करें, यह हमें मदद करेगा। जानना कि हम छोटे हैं, हमें मुक्ति की आवश्यकता है। यही प्रभु का स्वागत करने के लिए खुलापन है। यह उनके लिए अपने आप को खोलने का पहला कदम है। अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। समृद्धि में, अपने सुख संपन्नता में, हम आत्मनिर्भर होने के भ्रम में पड़ जाते और आत्मनिर्भर होने के कारण ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। संत पापा ने कहा, भाइयों और बहनों, यह एक धोखा है, क्योंकि हम प्रत्येक जन एक जरूरतमंद प्राणी हैं, नगण्य हैं। हमें अपनी शुद्रता को देख सकना और स्वीकार कर सकना है, और वहीं हम यीशु को पाएंगे। जीवन में अपने आप को छोटा समझना विकास का शुरुआती बिंदु है। यदि हम इस पर विचार करते हैं तब हम बढ़ेंगे। सफलता और समृद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर संघर्ष और दुर्बलता में। जरूरतमंद होने पर हम परिपक्व होते। हम अपने आप को ईश्वर के लिए, दूसरों के लिए और जीवन की सार्थकता के लिए खोलते हैं। हम अपनी आंखें दूसरों के लिए खोलते हैं। जब हम छोटे होते तब हम जीवन के सच्चे अर्थ के लिए खुलते हैं। जब हम समस्याओं, क्रूस अथवा बीमारी के सामने छोटे महसूस करते, जब हम थकान और एकाकीपन का एहसास करते हैं, तब हम निराश ना हो, तब हमारे छिछलेपन का मुखौटा गिरता है और हमारी वास्तविक दुर्बलता फिर उभरती है। यही हमारा आम आधार है, हमारा खजाना, क्योंकि ईश्वर के साथ कमजोरियां बाधा नहीं है बल्कि अवसर है। इस तरह यह एक सुंदर प्रार्थना हो सकती है, प्रभु मेरी कमजोरियों पर नजर डालिए। संत पापा ने कहा, ईश्वर के सामने यह एक सुंदर मनोभाव है। निश्चय ही हम दुर्बलता में ही समझते हैं कि ईश्वर हमारी कितनी चिंता करते हैं। आज का सुसमाचार पाठ बतलाता है कि यीशु छोटों के साथ अत्यधिक कोमल है, उनका आलिंगन करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। संत पापा ने कहा कि असफलताएं जो हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं, वे उनके प्रेम का एहसास करने के सुअवसर हैं। जो लोग धीरज से प्रार्थना करते वे अच्छी तरह जानते हैं कि अंधकार या अकेलापन के समय में ईश्वर की कोमलता हमारे साथ होती है, वह और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब हम छोटे होते तभी ईश्वर की कोमलता को अधिक महसूस कर सकते हैं। यह कोमलता हमें शांति देती है, हमें बढ़ाती है, क्योंकि इसके द्वारा सामीप्य, करुणा और कोमलता में ईश्वर हमारे नजदीक आते हैं। किसी भी कारण से जब हम छोटे महसूस करते हैं तब ईश्वर हमारे नजदीक आ जाते और हम उन्हें अपने करीब पाते हैं। वे हमें शांति प्रदान करते और बढ़ाते हैं। प्रार्थना में प्रभु हमें एक पिता की तरह अपनी बाहों में ले लेते हैं। इसी के द्वारा हम महान बनते हैं, न कि अपने भ्रामक आत्मनिर्भरता के द्वारा। यह किसी को भी महान नहीं बनाता, बल्कि हम पिता पर अपना पूरा भरोसा रखकर ही उनकी शक्ति से महान बन सकते हैं, जैसा कि बच्चे करते हैं। तब माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए संत पापा ने कहा, आज हम कुंवारी मरियम से महान कृपा की याचना करें, दीनता की कृपा, बच्चों की तरह होने की कृपा, जो पिता पर भरोसा रखते हैं, भरोसा रख सकें कि वे हमारी देखभाल करने के लिए कभी नहीं चूकते। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunc abit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने इक्वाडोर के गुआकिल जेल में हाल में हुई घटना की याद की, जहां कैदियों के बीच हिंसक हमले में करीब 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं उस घटना से बहुत हैरान हूं, जो इन दिनों इक्वाडोर के गुआकिल स्थित जेल में हुआ है। प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से संबंधित कैदियों के बीच हिंसा के भयंकर प्रकोप के परिणाम स्वरूप 100 से अधिक मौतें हुई हैं और कई घायल हो गए हैं। मैं उनके तथा उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर हमें अपराध के घावों को चंगा करने में मदद दे, जो सबसे गरीब लोगों को अधिक गुलाम बनाता है। वे उन लोगों की मदद करें जो जेलों में जीवन को अधिक मानवीय बनाने के लिए हर दिन काम करते हैं। तब संत पापा ने म्यांमार की भूमि में ईश्वर से शांति की याचना की, ताकि वहां के लोगों को दर्द और मौत के आंसू को सुखाकर जीना ना पड़े, बल्कि वे कठिनाइयों से ऊपर उठ सकें और शांति लाने के लिए एक साथ काम कर सकें। तत्पश्चात संत पापा ने कतंजारो में दो महिलाओं, मरिया अंतोनिया सामा और गैताना तोलोमियो की धन्य घोषणा की याद की, जिन्हें जीवन भर शारीरिक पीड़ा सहना पड़ा था, किंतु ईश्वर की कृपा से उन्होंने अपनी बीमारी के क्रूस का आलिंगन किया और पीड़ा को प्रभु की स्तुति में बदल दिया। उनका बिस्तर बहुत सारे लोगों के लिए एक आध्यात्मिक संदर्भ बिंदु और प्रार्थना तथा ख्रिस्त विकास का स्थान बना, जो वहां आराम और आशा पाते हैं। तब संत पापा ने ताली बजाकर नए धन्यों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद संत पापा ने पोम्पे के मरिया तीर्थस्थल पर एकत्रित विश्वासों की याद की, जो अक्टूबर के पहले रविवार को कुंवारी मरियम से अर्जी करने के लिए तीर्थस्थान पर एकत्रित थे। उन्होंने याद दिलाया कि इस माह में पौत्र रोजरी माला की विनती की जाती है। तत्पश्चात उन्होंने रोम वासियों और विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया। अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica, anche i ragazzi dell'Immacolata pure. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
नन्हे बालकों के संग सरल हो के पाएंगे हम स्वर्ग लोक जो परम। नन्हे बालकों के संग सरल हो के पाएंगे हम स्वर्ग लोक जो परम। नन्हे बच्चों से मासूम हो हर्षित यीशु को करेंगे हम। नन्हे बालकों के संग सरल हो के पाएंगे हम स्वर्ग लोक जो परम। यीशु को
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वास और विज्ञान COP26 की ओर बैठक के लिए वाटिकन में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और धर्म गुरुओं को एकत्रित किया। इसके दौरान प्रतिभागियों ने आगामी संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन से पहले एक संयुक्त अपील पर हस्ताक्षर किया। 1-12 नवंबर को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 4 अक्टूबर को वाटिकन के आशीर्वाद सभागार में दुनिया भर के धार्मिक नेताओं और वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की। इस बैठक का विषय था विश्वास और विज्ञान COP26 की ओर। ग्रेट ब्रिटेन और इटली के दूतावासों के प्रस्ताव से पैदा हुई एक वाटिकन पहल है। यह इस साल की शुरुआत में शुरू हुई आभासी बैठकों के माध्यम से विकसित हुआ, जिसमें धार्मिक नेता और वैज्ञानिक ग्रह के लिए अधिक जिम्मेदारी और आवश्यक परिवर्तन के लिए अपनी चिंताओं और इच्छाओं को साझा किया। संत पापा और प्रतिभागियों ने COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष आलोक शर्मा और इटली के विदेश मामलों के मंत्री लुइजी डी माइयो को एक संयुक्त घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया। बैठक में प्रतिभागियों को अपने संबोधन में संत पापा फ्रांसिस ने उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया, जो आपस में और वैज्ञानिक विशेषज्ञों के साथ एक गहन संवाद की इच्छा को दर्शाता है और उनके प्रतिबिंब को निर्देशित करने के लिए संत पापा ने 3 अवधारणाओं का प्रस्ताव किया। परस्पर निर्भरता और साझा करने के लिए खुलापन, प्रेम की गतिशीलता और सम्मान की पुकार। संत पापा ने कहा, हमारी दुनिया में सब कुछ गहराई से आपस में जुड़ा हुआ है। विज्ञान और हमारी धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक परंपराओं ने भी अपने और सृष्टि के बीच इस जुड़ाव पर जोर दिया है। हम प्राकृतिक दुनिया में मौजूद ईश्वरीय सद्भाव के संकेतों को पहचानते हैं, क्योंकि कोई भी प्राणी आत्मनिर्भर नहीं है। वे केवल एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के पूरक एवं एक दूसरे की सेवा में मौजूद हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि सृष्टिकर्ता ने एक दूसरे को दिया ताकि सब विकसित हो सकें और प्रेम एवं सम्मान के रिश्ते में पूर्णता तक पहुंच सकें। आज की बैठक जो भाईचारे की भावना से कई संस्कृतियों और आध्यात्मिकताओं को एक साथ लाती है, हमारे इस एहसास को मजबूत कर सकती है कि हम मानव परिवार के सदस्य हैं। हम में से प्रत्येक की अपनी धार्मिक मान्यताएं और आध्यात्मिक परंपराएं हैं, लेकिन कोई भी सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक सीमाएं या बाधाएं हमें एक साथ खड़े होने से नहीं रोक सकती। इस खुलेपन को प्रकाशित करने और निर्देशित करने के लिए आइए हम अपने आप को एक दूसरे से आश्रित और सहजिम्मेदारी के आकार के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध करें। इस प्रतिबद्धता को प्रेम की गतिशीलता से निरंतर संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि हर दिल की गहराई में प्रेम बंधन बनता है और अस्तित्व का विस्तार करता है। प्रेम एक गहन आध्यात्मिक जीवन का दर्पण है, एक ऐसा प्रेम जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए सभी तक फैला हुआ है, एक प्रेम जो समावेशी है, विशेष रूप से गरीबों के लिए चिंतित है, जो अक्सर हमें स्वार्थ की बाधाओं को दूर करना और हमारे अहंकार की दीवारों को तोड़ना सिखाता है। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 4 अक्टूबर को भोपाल महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष लियो कॉर्नेलियो SVD का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनके स्थान पर वर्तमान में खंडवा के धर्माध्यक्ष अलंगाराम आरोक्या सेबास्टिन दुराईराज SVD को भोपाल महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। धर्माध्यक्ष सेबास्टिन दुराईराज का जन्म 3 मई 1957 को तमिलनाडु स्थित मदुरई धर्म प्रांत के थिरुनगर में हुआ। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1971 में तिरुचिनापल्ली के संत चार्ल्स सेमिनरी में सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड के लिए प्रवेश किया। 8 मई 1985 को मदुरई थिरुनगर में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। इसके बाद उन्होंने झाबुआ मेघनगर में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में अपनी सेवा दी। 11 मई 2009 को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा खंडवा धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया और 16 जुलाई 2009 को उनका धर्माध्यक्षीय अभिषेक हुआ और तब से वे खंडवा धर्म प्रांत की अगुवाई कर रहे हैं। उधर मंगलवार 5 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस वाटिकन में शिक्षा के विषय को समर्पित धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में भाग लेंगे। यह आयोजन यूनेस्को द्वारा प्रचारित विश्व शिक्षक दिवस के साथ मेल खाता है। बैठक की घोषणा 2 अक्टूबर को परम धर्मपीठीय कैथोलिक शिक्षा धर्म संघ और शिक्षा पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिति द्वारा की गई। वे वाटिकन में बैठक का आयोजन कर रहे हैं। विषय धर्म और शिक्षा, शिक्षा पर एक वैश्विक समझौता की ओर होगा। पहली बार विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु चुनौतियों के आधार पर शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साझा करने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक शैक्षिक प्रक्रिया के केंद्र में व्यक्ति को रखना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सर्वोत्तम ऊर्जा का निवेश करना, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना जो समुदाय की सेवा करने के इच्छुक हों। अंत में प्रतिभागी 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर दुनिया भर के शिक्षकों को एक संदेश प्रेषित करेंगे। उधर परम धर्म पीठ या सामाजिक विज्ञान अकादमी को दिए एक संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लोगों की खुशी सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में आत्मा की दीनता की ओर इशारा किया। परम धर्म पीठ या सामाजिक विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित एक बैठक का उद्देश्य आशीर्वचनों को गहराई से समझना है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 3 से 4 अक्टूबर को चल रही बैठक की विषय वस्तु है कारितास, सामाजिक मित्रता और गरीबी का अंत, खुशी का विज्ञान और नैतिकता। बैठक को संत पापा फ्रांसिस के एक संदेश के साथ शुरू किया गया। संत पापा ने कहा कि खुशी प्रत्येक स्त्री और पुरुष की सबसे गहरी इच्छा है और प्रभु उन लोगों से इसकी प्रतिज्ञा करते हैं जो उनकी शैली के अनुसार जीते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।